कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया। अंग्रेजी हुकूमत शुरू से ही कांग्रेस को शक की नज़रों से देखती थी और राष्ट्रवादी भावना को किसी भी तरह पनपने नहीं देना चाहती थी। शुरू के कुछ वर्षों में कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया काफ़ी नरम रहा, क्योंकि सरकार को विश्वास था कि कांग्रेस की गतिविधियां बौद्धिक बहस तक ही सीमित रहेगी और चंद बुद्धिजीवी ही इसके दायरे में आएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार को पता लगा कि कांग्रेस का दायरा बढ़ रहा है, वह भारतीय राष्ट्रीयता की वाहक बन रही है और प्रेस बड़े पैमाने पर जनता में राजनीतिक चेतना का काम करने लगा है, सरकारी अधिकारी कांग्रेस राष्ट्रवादियों और प्रेस की आलोचना करने लगे। राष्ट्रवादियों को गद्दार, देशद्रोही, ब्राह्मण, अहिंसक, खलनायक और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना बताया गया। कांग्रेसी नेताओं के बारे में कहा गया कि वे कुर्सी न पाने से विक्षुब्ध कुछ लोग तथा कुछ असंतुष्ट वकील हैं जो अपने सिवा किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 1887 में तत्कालीन वायसराय डफरिन ने एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस की जमकर आलोचना की और कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर संभ्रांत लोगों का ही नेतृत्व कर रही है। तत्कालीन भारत के गृह सचिव जॉर्ज हैमिल्टन ने कांग्रेस को राजद्रोही बताते हुए उस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। इस समय तक लड़ाकू तथा अथवा गर्मपंथी विचारधारा पनपने लगी थी। कांग्रेसी नेता इस विचारधारा से अपने को अलग रखने लगे। इतना सब करने के बावजूद फिरंगी हुकूमत का कांग्रेस के प्रति द्वेष भाव कम नहीं हुआ। उल्टे फिरंगी हुकूमत और भी निर्ममता से कांग्रेस पर हमला करने लगी, उसे खत्म करने की कोशिशें करने लगी। इसके दो कारण थे। पहला यह कि नरमपंथी चाहे जितने उदारवादी रहे हों, वे तो राष्ट्रवादी उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति व विचारधारा के प्रचारक। 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था, गोखले या तो यह समझ नहीं रहे हैं कि वह जा कहाँ रहे हैं, और अगर उन्हें यह मालूम है तो वह बेईमान हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने की अपील और साथ ही ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह जॉर्ज हैमिल्टन ने 1900 में दादा भाई नेहरूजी के बारे में कहा था, आप अपने को अंग्रेजी हुकूमत का समर्थक बताते हैं, लेकिन जो कदम अंग्रेजी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए उठाए जाते हैं और उनके जो नतीजे निकलते हैं, उनकी आप आलोचना करते हैं। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी घुसपैठ नहीं है, अतः ऐसे मौक़ों पर इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे कर्जन। जॉर्ज हैमिल्टन ने भी इसका जोरदार समर्थन किया। 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर के लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। 1905 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने तक से इनकार कर दिया। कांग्रेसी नेताओं के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होती। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन तथा गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा ने जैसे ही जोर पकड़ा, अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों में तदनुसार बदलाव आया। अब राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक वैकल्पिक नीति तैयार की गई, नरमपंथियों को धुतकारने की बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति। 1907 में भारत के नए गृह सचिव जॉन मार्ले ने यह नीति बनाई। इस नीति के तीन उद्देश्य थे, दमन, समझौता और उन्मूलन। गर्मपंथी और लड़ाकू राष्ट्रवादियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाइयाँ की जाने वाली थी, जिनका उद्देश्य नरमपंथियों में दहशत पैदा करना था। इसके बाद नरमपंथियों को कुछ रियायतें देकर रिझाने की और यह समझाने की योजना थी कि यदि वे गर्मपंथियों से अलग हो जाएं, तो उन्हें और भी रियायतें दी जाएंगी। नई नीति का मूल मकसद गर्मपंथियों और नरमपंथियों को अलग थलग कर देना था। चाल यह थी कि यदि एक बार नरमपंथी सरकार के जाल में फंस गए तो गर्मपंथियों को आसानी से खत्म किया जा सकता है, और एक बार गर्मपंथी खत्म कर दिए गए तो नरमपंथियों को धुतकारा जा सकता है। दुर्भाग्यवश नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों सरकार की कुटिल चाल को भाप न सके। भिरंगी हुकूमत ने कांग्रेसियों को फंसाने के लिए नए सुधारों का चारा फेंका। लॉर्ड मिंटो वायसराय बन चुके थे और जॉन मार्ले गृह सचिव। 1906 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में सरकार ने इन सुधारों पर कांग्रेस के नरमपंथी नेतृत्व से बातचीत शुरू कर दी। नरमपंथी कांग्रेसी नेता इन सुधारों पर सरकार से बातचीत करने और उसे मदद देने पर राजी हो गए। उल्लेखनीय है कि जिस समय इन सुधारों पर सदन में बहस हो रही थी, देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और सरकार इसे कुचलने के लिए हर तरह की दमनात्मक कार्रवाइयां कर रही थी। इस विसंगति का नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रवादी नेताओं में फूट पड़ गई। इससे पहले कि इस फूट के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए, यहाँ यह बताना जरूरी है कि नरमपंथियों को गर्मपंथियों और लड़ाकू नेताओं से अलग करने की अंग्रेजों की नीति बाद के वर्षों में भी जारी रही। बतौर उदाहरण, 1924 में स्वराजवादियों से, 1936 में नेहरू और वामपंथियों से तथा 1942 में हिंसक आंदोलन चलाने वालों से नरमपंथियों को अलग रखने की कोशिशें की गईं, उनमें फूट डालने की कोशिशें की गईं। फर्क केवल इतना था कि राष्ट्रीय नेतृत्व 1907 से 1909 की घटनाओं से सबक सीख चुका था, अतः वह अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसा। तमाम मतभेदों के बावजूद राष्ट्रवादी आंदोलनकारी एकताबद्ध रहे।